ऑल नेशंस गोस्पेल पब्लिशर्स द्वारा मेरी आत्मा प्यासी है। जैसे हिरण ठंडे पानी की एक धारा के लिए तरसता है, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए तरसता हूँ, हे भगवान। मैं तुम्हारे लिए प्यासा हूँ, जीवित भगवान। भजन 42 पद 1 से 2। भजनहार के ये शब्द हर इंसान पर लागू होते हैं। ईश्वर ने हमें बनाया है, आत्मा, आत्मा और शरीर। जिस तरह हमारा शरीर खाने पीने की भूखी है, उसी तरह हमारी आत्मा ईश्वर, जीवित ईश्वर की प्यासी है। अगर हम अपने शरीर को नहीं खिलाते हैं या इसे पीने के लिए कुछ नहीं देते हैं, तो हम मर जाते हैं, या अगर गलत खाना या पेय दिया जाता है, तो हम बीमार हो जाते हैं। यही बात हमारी आत्मा पर भी लागू होती है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रह सकता, परंतु उसे हर उस वचन की आवश्यकता होती है जो परमेश्वर कहता है। मत्ती 4:4। मैं जीवन की रोटी हूँ, यीशु ने उनसे कहा। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। क्योंकि जो रोटी परमेश्वर देता है वह स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यूहन्ना 6:33-35। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है। जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवित रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी। यदि कोई इस रोटी को खाए तो वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। यूहन्ना 6:47-48। यीशु ने सामरिया की स्त्री से कहा कि यदि वह केवल यह जानती कि परमेश्वर क्या देता है, तो वह उससे मांगेगी और वह उसे पीने के लिए जीवनदायिनी जल देगा। उसने उससे यह भी कहा कि जो कोई उसके द्वारा दिए गए पानी को पिएगा, उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो पानी वह देगा वह उसके लिए सोता बनेगा, जो उसे जीवन देने वाला जल देगा और उसे अनंत जीवन देगा। यूहन्ना 14:10-14। यीशु परमेश्वर का वचन, जो मनुष्य बन गया और हमारे बीच रहा, एकमात्र जीवित रोटी है जो तृप्त करती है, और केवल वही है जो हमारी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए जीवित जल देता है। इस दुनिया में और कुछ भी हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता और हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। धन, सुख, स्त्री, पुरुष, यश, सम्मान, मद्यपान, नाच गाना, तंबाकू, नशीला पदार्थ या अन्य कोई भी चीज हमारी अमर आत्मा की प्यास को तृप्त नहीं कर सकती। जिस धनी व्यक्ति के बारे में यीशु ने बात की थी, उसके पास ये सब चीजें थीं, लेकिन जब वह अंत में नरक में गया तो उसे अनंत प्यास लगी और उसने चाहा कि लाजर अपनी उंगली को पानी में डुबोए और अपनी जलती हुई जीभ पर रखे, क्योंकि वह आग की लपटों में तड़प रहा था। अनंत नरक, लेकिन लाजर उसकी मदद नहीं कर सका। लूका 16:19-31। ओह मेरे दोस्त, इस दुनिया की खाली चीजों पर अपनी आत्मा को खिलाने की कोशिश करना बंद करो। वे आपको धोखा देते हैं। वे आपको संतुष्ट करने का दिखावा करते हैं और आपको पहले से कहीं ज्यादा भूखे प्यासे छोड़ देते हैं। यह होगा एक भूखे आदमी की तरह जो सपने देखता है कि वह खा रहा है और भूखा जागता है, या प्यास से मरने वाले आदमी की तरह जो सपने देखता है कि वह पी रहा है और सूखे गले से जागता है। यशाया 29:8। यदि तुम अपनी आत्मा को जीवन की रोटी नहीं खिलाते और उसे जीवन का जल नहीं देते, तो वह मर जाएगी। पाप का सुख आत्मा का भोजन नहीं है। भगवान ने हमें बनाया और मनुष्य को एक जीवित आत्मा बनाया। केवल ईश्वर ही हैं जो हमारी आत्मा की लालसा और प्यास को संतुष्ट कर सकते हैं। हमारी आत्माएं संतोष के लिए जीवित परमेश्वर को पुकारती हैं। अगर हम अपनी आत्माओं को संतुष्टि नहीं मिलने देंगे तो हम मर जाएंगे और नरक की कभी न खत्म होने वाली आग की लपटों में अनंत प्यास और भूख को भोगेंगे। यीशु हमारे प्राणों को जीवित रोटी खिलाने और जीवित जल से हमारी प्यासी आत्माओं को तृप्त करने के लिए स्वर्ग से उतरे। उसी तरह जैसे आप प्राकृतिक रोटी खाते हैं और इसे अपने शरीर में लेते हैं, यीशु को अपने दिल में ले ले और पवित्र आत्मा में पिए, जिसे यीशु ने इस दुनिया में आपके भीतर जीवन का एक फव्वारा बनने के लिए भेजा है, आपको प्रबुद्ध और मजबूत करने और नेतृत्व करने के लिए आप सभी सत्य में। यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, और मैं उसे अंतिम दिन जिलाएगा। क्योंकि मेरा मांस ही असली भोजन है, मेरा लहू ही असली पेय है। जो मेरा मांस खाता और पीता है, मेरा लहू मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूँ। फिर वह रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, वह है, जो इस रोटी को खाए वह सर्वदा जीवित रहेगा। यूहन्ना 6:54-58। यीशु को स्वीकार करें। अब ईश्वर का उपहार, जो हमारी आत्मा की भूख को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। स्वर्ग की ओर पहला कदम। भगवान ने हमें एक पक्का रास्ता दिया है, जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जो भगवान ने हमारे लिए प्रदान किया है। स्वर्ग की ओर ले जाने वाली सीढ़ी में कई सीढ़ियां होती हैं। परमेश्वर के लिए पहला कदम पाप से पश्चाताप है। जॉन द बैप्टिस्ट ने सिखाया और कहा, अपने पापों से दूर हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 3:1-2। प्रेरितों ने लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहा। पत्रस ने कहा, तुम में से हर एक अपने पापों से फिरकर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं। प्रेरितों के काम 2:38। तो अपने मन की इस बुराई से मन फिराओ और यहोवा से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें क्षमा करे। परमेश्वर ने उन समयों को अनदेखा किया है जब लोग उसे नहीं जानते थे, परंतु अब वह उन सब को हर जगह आज्ञा देता है कि वे अपने बुरे मार्गों से फिरें। प्रेरितों के काम 3:19, 8:22 और 17:30। गिरे हुए गिरजागरों के लिए चर्च के प्रमुख यीशु ने कहा, सोचो कि तुम कितनी दूर गिर गए हो। अब अपने पापों से फिरो। यदि तुम नहीं करते हो, तो मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे खिलाफ निकली हुई तलवार से लड़ूंगा। मेरे मुंह से जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, मैं उन्हें डांटता और अनुशासन देता हूँ, इसलिए गंभीर और पश्चाताप करो। प्रकाशित वाक्य 2:5-16। पश्चाताप का अर्थ है अपने पुराने जीवन से मुंह मोड़ना और यीशु का अनुसरण करना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। प्रेरितों के काम 11:21-14:15। पश्चाताप सभी पापियों और अविश्वासियों से संबंधित है, साथ ही उन सभी से जो केवल नाम के लिए ईसाई हैं और पाप में जी रहे हैं और आध्यात्मिक रूप से मृत हैं। उन्हें अपने पापों का पश्चाताप करने दो। पश्चाताप एक व्यक्ति को पाप से दूर करने, मूर्तियों, जादू टोना, मद्यपान, यौन अनैतिकता, चोरी करने और झूठ बोलने और बुरी प्रथाओं को त्यागने का कारण बनता है। तुम जो बुराई करते हो उन सब से फिरो और आपके पाप से तुम्हारा नाश न होने पाए। यहेजकेल 18:30-32। पश्चाताप पूर्ण मोक्ष का द्वार है। मत्ती 3:2 और प्रेरितों 2:37-38। पश्चाताप हमारे द्वारा किए गए पापों के लिए सच्चा दुख है। मत्ती 26:75 और 2 कुरिन्थियों 7:10। पश्चाताप पाप से फिरना है। लूका 15:18। पश्चाताप अपने पाप को स्वीकार करना है और इसे छिपाना नहीं है। 1 यूहन्ना 1:9 और नीतिवचन 28:13। पश्चाताप पूरी तरह से भगवान को समर्पण करना है। लूका 9:62। आपने जो गलत किया है उसे सही करने के लिए पश्चाताप है। लूका 19:8। पवित्र आत्मा पाप के लिए दोषी ठहराता है और हमें पश्चाताप करने में मदद करता है। यूहन्ना 16:8। कुछ जिन्होंने पश्चाताप किया है। राजा दाऊद ने पश्चाताप किया और उसे क्षमा कर दिया गया। भजन 51:1-12। दानियेल ने अपने लोगों की ओर से पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। दानियेल 9:3-19। राजा और नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और पूरे शहर को बचाया गया। योना 3:5-10। खोए हुए बेटे ने पश्चाताप किया और उसके पिता ने उसका स्वागत किया। लूका 15:21। प्रेरित पत्रस ने पश्चाताप किया और उसे क्षमा कर दिया गया। मत्ती 26:75। शाऊल ने पश्चाताप किया और पौलुस शक्तिशाली प्रेरित बन गया। प्रेरितों के काम 9:1-2। झूठा पश्चाताप। कुछ लोग पछताते हैं लेकिन उनका पश्चाताप सच्चा नहीं होता। आदम ने हव्वा को दोषी ठहराया और हव्वा ने अपने पापों के लिए सांप को दोषी ठहराया। राजा फिरौन ने परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए पश्चाताप किया लेकिन उसका पश्चाताप सच्चा नहीं था। निर्गमन 9:27-16। बिलाम पैगंबर ने पश्चाताप किया लेकिन गलत तरीके से जारी रखा। संख्या 22:34। राजा शाऊल ने पश्चाताप किया लेकिन वह उसी समय सम्मानित होना चाहता था और उसने अपने पाप के लिए कोई वास्तविक दुख नहीं दिखाया। 1 Samuel 15:30। यहूदा इस्करियोती ने झूठे तरीके से पश्चाताप किया। उसने यीशु के पास जाने के बजाय पाखंडी याजकों के सामने अपने पाप को स्वीकार किया जिसे उसने धोखा दिया था। मत्ती 27:3-4। हमें पश्चाताप करना चाहिए और अपने पापों को उसके सामने स्वीकार करना चाहिए जिसके खिलाफ हमने पाप किया है। खोए हुए बेटे ने सच्चा पश्चाताप दिखाया। वह उठा और सुअरों और अपने स्वामी को छोड़ दिया और सीधे अपने पिता के पास गया और कहा, पिता, मैंने परमेश्वर और तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है। मैं अब तुम्हारा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। लूका 15:11-24। उसने किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर आरोप लगाया, बल्कि उसे अपने पिता की अच्छाई और प्यार पर भरोसा था। सच्चा पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप उसके फल और कार्यों से जाना जाता है। विश्वास के फल और कार्य स्वयं को तब प्रकट करते हैं जब एक पापी वास्तव में अपने पापों को छोड़ देता है और अपने पाप पूर्ण तरीकों पर वास्तविक दुहक दिखाता है। चोर ने जो कुछ चुराया है उसे उसके असली मालिक को वापस कर देगा। शराबी अपनी बियर और ब्रांडी को खत्म कर देगा। जो मूर्तियों और जादू टोने पर भरोसा करता है वह अपनी मूर्तियों और ताबीज को जला देगा। विश्वासघाती पति या पत्नी अपने घर में सही संबंध बहाल करेंगे और सभी पापी संबंधों को छोड़ देंगे। मुख्य चुंगी लेने वाले जक्कई ने यीशु को अपने घर में स्वीकार किया और कहा, श्रीमान, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा और यदि मैंने किसी को धोखा दिया है तो मैं उसे 4 गुना अधिक चुकाऊंगा। लूका 19:8। लेखक उन सैकड़ों पापियों के बारे में जानता है जिन्होंने परमेश्वर के प्रति पश्चाताप के बाद सभी प्रकार की चुराई हुई या गलत तरीके से प्राप्त की गई चीजों को सही मालिक को लौटा दिया। पैसे, कपड़े, फर्नीचर, उपकरण, भेड़, मुर्गी, बैल, चाकू, तंबाकू, कार, आकर्षण और दवाएं, पासा, चुड़ैल की हड्डियां, रिवाल्वर आदि को हटा दिया गया था। बहुतों ने उनसे पूछा कि उन्होंने क्षमा के लिए किसके साथ अन्याय किया और शांति पाई। ऐसा करने से चोरी के माल के कई मालिकों को, जो वापस कर दिए गए थे, पश्चाताप और मोक्ष भी मिला। देर मत करो, अब अपने घुटनों के बल जाओ और अपने हृदय को पश्चाताप में परमेश्वर के सामने उंडेल दो। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुम्हें शांति और अनंत जीवन देगा। पाखंड। पाखंड एक झूठा धर्म है जो हमारे धर्म के बाहरी रूप को धारण करता है लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति को अस्वीकार करता है। एक पाखंडी वह व्यक्ति होता है जो वह होने का दिखावा करता है जो वह नहीं है, जो झूठे मोर्चे पर डालता है। 2 Timotheus 3:5 और Matthew 23:13-14। वह एक पवित्र व्यक्ति होने का दिखावा करता है लेकिन गुप्त पाप में रहता है। वह मनुष्यों के सामने दिखने और मनुष्य की प्रशंसा पाने के लिए अच्छे काम करता है। वह अपने कई पापों को ढकने के लिए धर्म का लबादा पहनता है। यीशु ने पाखंडियों की तुलना सफेदी की हुई कब्रों से की जो बाहर से साफ और सफेद हैं, लेकिन अंदर सड़ी हुई हैं। एक पाखंडी को आंतरिक शुद्धता की तुलना में पवित्रता के बाहरी स्वरूप के बारे में अधिक चिंता होती है। एक पाखंडी केवल मुसीबत, बीमारी और खतरे के समय में या जब उसे जरूरत होती है तब भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जब भगवान ने उसकी परेशानी के माध्यम से उसकी मदद की है तो उसे भगवान के लिए कोई प्यार नहीं है और प्रार्थना में भगवान के साथ समय नहीं बिताता है। वह फिरौन के समान है जिसने मिस्र पर विपत्तियों के आने पर अपने पाप और अपनी जाति के पाप को स्वीकार किया और मूसा से प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही विपत्तियां समाप्त हुई उसने और उसके लोगों ने उनके दिलों को कठोर कर दिया। निर्गमन 9:27-34 और 10:16-20। पाखंडी छोटे छोटे दोषों के लिए दूसरों का न्याय करता है और उनकी कड़ी आलोचना करता है, जबकि वह स्वयं बहुत बड़े दोषों का दोषी है। वह अपने भाई की आंख में धब्बे का पता लगाने या देखने के लिए जल्दी है, लेकिन अपने आप में तख्त नहीं देख सकता। मत्ती 7:5। वह बाहरी चर्च समारोहों और परंपराओं के पालन के बहुत शौकीन हैं, लेकिन भगवान की आध्यात्मिक पूजा पसंद नहीं करते हैं। मत्ती 15:2-7-8। पाखंडी सार्वजनिक रूप से लंबी प्रार्थना करना पसंद करता है, लेकिन घर में भगवान से उसका कोई संपर्क नहीं होता है। पाखंड के पाप को ठीक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत ही चतुराई से धार्मिक गतिविधियों के विभिन्न आवरणों के नीचे छिप जाता है। यह बाहरी लोगों और अन्य जातियों को भी ईसाई धर्म से घृणा करने का कारण बनता है। परमेश्वर अपने पूरे मन से पाखंड से घृणा करता है। भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं, परमेश्वर का न्याय उस आग की तरह है जो हमेशा के लिए जलती रहती है। क्या हम में से कोई भी उस तरह की आग से बच सकता है? यदि आप कहते हैं और सही काम करते हैं तो आप जीवित रह सकते हैं। गरीबों को धोखा देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग न करें और घूस न लेना। उन लोगों के साथ न मिलो जो हत्या करने या अन्य बुरे काम करने की योजना बनाते हैं। यशायाह 33:14-15। और प्रत्येक व्यक्ति के काम की गुणवत्ता तब देखी जाएगी जब मसीह का दिन उसे उजागर करेगा, क्योंकि उस दिन आग सभी के काम को प्रकट करेगी। आग इसकी जांच करेगी और इसकी वास्तविक गुणवत्ता दिखाएगी। 1 कुरिन्थियों 3:13। यीशु ने कहा, फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, मेरा मतलब उनका कपट है। जो कुछ ढका हुआ है वह खुल जाएगा और हर रहस्य पर प्रकाश डाला जाएगा। लूका 12:2। मत्ती 23 का पूरा अध्याय हमें पाखंड के पाप से सावधान करने के लिए लिखा गया था। यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों को उनके पाखंड के कारण डांटा और चेतावनी दी। उसने उन्हें सर्प और सर्पों के पुत्र कहा और कहा, व्यवस्था के शिक्षकों और फरीसियों, तुम्हारे लिए कितना भयानक है। हे कपटी, तुम अपने प्याले और थाली के बाहर को साफ करते हो जबकि भीतर से भरा हुआ है, जो तुमने हिंसा से प्राप्त किया है और स्वार्थ। अंधे फरीसी, पहले प्याले के अंदर जो है उसे साफ करो और फिर बाहर भी साफ होगा। तुम कानून के शिक्षकों और फरीसियों के लिए कितना भयानक है। हे कपटी, आप सफेदी वाली कब्रों की तरह हैं, जो बाहर से अच्छी लगती हैं लेकिन हड्डियों और अंदर से सड़ती हुई लाशों से भरी होती हैं। उसी तरह आप बाहर से दिखाई देते हैं सबका भला है, परंतु भीतर से तुम कपट और पापों से भरे हुए हो। मत्ती 23:25-28। अंत के दिनों में लोग सच्चाई से दूर हो जाएंगे और झूठ बोलने वाली आत्माओं और राक्षसों की शिक्षाओं का पालन करेंगे, जो धोखेबाज झूठे लोगों द्वारा फैलाए गए हैं, जिनके विवेक मर गए हैं, मानो गर्म लोहे से जला दिया गया हो। 1 तीमुथियुस 4:1-2, वे नरक के अभिशाप से नहीं बचेंगे। मुक्ति। हम पाखंड के इस घातक जहर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? पहली बात यह है कि परमेश्वर को उसकी आत्मा और उसके वचन के माध्यम से हमें दोषी ठहराने की अनुमति दी जाए जहां पाखंड की आत्मा ने हमें पकड़ लिया हो। सच्चा पश्चाताप और परमेश्वर के सामने पूर्ण अंगीकार और जहां मनुष्य के सामने आवश्यक हो, इस महान और गहरे पाप से मुक्ति की शुरुआत है। हमें पूरी तरह से इस बात का एहसास होना चाहिए कि ईश्वर की सर्वदर्शी आंख हर पाप को देख सकती है। हम दूसरों की नजरों से छिप सकते हैं और खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम कभी भी भगवान को धोखा नहीं दे सकते। वह दिल के विचारों और इरादों को जानता है और उसका कान वह सुन सकता है जो गुप्त रूप से कहा जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा हर विचार स्वर्ग में जाना जाता है। हम भगवान की नजर से नहीं छिप सकते। जो कुछ ढका हुआ है वह खुल जाएगा और सब भेद प्रकट हो जाएंगे। लूका 12:2, कपटी की आशा नष्ट हो जाएगी क्योंकि पाखंडी उसके सामने खड़ा नहीं होगा। पाखंडी की क्या आशा है जब भगवान उसकी आत्मा को ले लेता है? संकट आने पर क्या परमेश्वर उसकी पुकार सुनेगा? भगवान के बलिदान एक विनम्र आत्मा है। मेरा बलिदान एक विनम्र आत्मा है, हे भगवान। आप एक विनम्र और पश्चाताप करने वाले दिल को अस्वीकार नहीं करेंगे। भजन 51:17। इसलिए आप विनम्र पश्चाताप और ईश्वर के प्रति स्वीकारोक्ति के माध्यम से मुक्ति पा सकते हैं और पाखंड के जीवन से एक सच्चे ईसाई जीवन जीने के लिए मुड़ सकते हैं जिसमें पश्चाताप और आत्मा के फल दिखाई देते हैं। बल्ला मत बनो। एक चमगादड़ पक्षी की तरह दिखता है और फिर भी वह पक्षी नहीं है। यह एक चूहे की तरह दिखता है लेकिन यह माउस नहीं है। यह न तो पक्षी है और न ही चूहा। उसे रोशनी से ज्यादा अंधेरा पसंद है। यह कई तथाकथित ईसाइयों की तस्वीर है जो रविवार के चर्च में जाते हैं और शेष सप्ताह वे पाप का जीवन जीते हैं। एक दिन वे ईसाई होने का दिखावा करते हैं, अगले दिन वे दुनिया के पापी और अविश्वासी के समान होते हैं। वे ईसाई प्रतीत होते हैं लेकिन उनके दिलों में वे अभी भी पुरानी मूर्ति पूजाओं से चिपके रहते हैं, शैतान से सहमत होते हैं जो इस दुनिया के देवता हैं और सभी प्रकार के पाप करते हैं। वे परमेश्वर और शैतान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। वे बल्ले की तरह हैं, न तो एक चीज और न ही दूसरी, और उन्हें रोशनी से बेहतर अंधेरा पसंद है। बल्ला मत बनो, ईसाई बनो। काश आप या तो एक या अन्य होते, भगवान ने कहा, लेकिन क्योंकि तुम गुनगुने हो, न गर्म और न ही ठंडे, मैं तुम्हें अपने मुंह से थूकने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3:15-16।